प्रस्तुत है कार्यक्रम एक मुलाकात जरूरी है। इस कार्यक्रम में हम आपको फिल्म जगत के कुछ प्रतिष्ठित और कुछ उभरते हुए कलाकारों से मुलाकात करवाते हैं। इनसे मुलाकात करते हैं सचिव सारथी, रेडियो प्लेबैक इंडिया के सौजन्य से प्राप्त। आइए सुने आज का ये कार्यक्रम।
नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम एक मुलाकात जरूरी है मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं यानी आपका दोस्त, आपका साथी सजीव सारथी, आप सुन रहे हैं रेडियो प्लेबैक इंडिया। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान जो बनकर आए हैं वो है एक बहुत ही काबिल, बहुत ही गुणी गायक दिग्विजय सिंह परियार, जो बॉलीवुड में सलीम सुलेमान और शंकर महादेवन जैसे बड़े संगीतकारों के साथ काम कर चुके हैं, गा चुके हैं उनके लिए गाना। रेडियो प्लेबैक इंडिया पर और कार्यक्रम में एक मुलाकात जरूरी है मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है।
थैंक यू सजीव जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे इस इंटरव्यू के लिए बुलाया, थैंक्स अ लॉट।
दिग्विजय भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, आपका गाना रॉक ऑन का बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है और मेरा भी बहुत पर्सनल फेवरेट है ये इस पूरी एल्बम का। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपने गायन को अपना प्रोफेशन क्यों चुना और किस उम्र में ये डिसाइड किया कि आपको गायक बनना है?
सजीव भाई, बचपन से ही मैं जब से मैं छोटा था तब से मैं गाता था और मम्मी साथ में मतलब मेरे को अंताक्षरी खिलाती थी, घर पे गुनगुनाती थी, बिकॉज मम्मी के अंदर कहीं ना कहीं गाने का हल्का फुल्का टैलेंट था। लाइक मम्मी गाती थी बचपन से, घर में म्यूजिक प्ले होता था, तो वो चीज़ की वजह से म्यूजिक मेरे अंदर आया और मैं लाइक बचपन से गाने लगा स्कूल फंक्शन एंड ऑल में। फिर मेरे घर वालों ने मेरे को सिखाया, म्यूजिक ट्रेनिंग करवाई, क्लासिकल म्यूजिक मैंने सीखा दिल्ली से, घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया। एंड फिर मैं कॉलेज करके फिर मुंबई शिफ्ट हुआ अपने करियर को प्रश्यू करने के लिए। काफ़ी लंबा टाइम रहा, मैंने सीखा, परफॉर्म किया बहुत सारी जगह और फिर मैं मुंबई यहाँ पे आके फिर मैंने स्ट्रगल किया।
जी दिग्विजय, तो आपने गंधर्व से आपने गायन सीखा और आप दिल्ली से हैं शायद मेरे ख्याल से, और आप कॉलेज फेस्टिवल्स वगैरह में आप गाते थे और कैसा रिस्पांस मिलता था आपको वहाँ पे?
हाँ जी, मैंने गंधर्व संगीत महाविद्यालय से मैंने अपना लाइक स्टार्टिंग मैंने म्यूजिक वहाँ से सीखा एंड फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी किरोड़ीमल कॉलेज से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया। एंड कॉलेज के दौरान लाइक हम लोग म्यूजिक सोसाइटी में थे कॉलेज की, तो जितने भी कॉलेज फेस्ट होते थे हम लोग उसमें जाते थे, पार्टिसिपेट करते थे एंड उसमें मैं हमेशा मेरा होता था कि मैं फर्स्ट आ रहा हूँ एंड कहीं सेकंड आ गया, तो मतलब पोजीशन तो हमेशा कुछ ना कुछ ज़रूर मैं जीतता था। एंड तीन बार मैं कंटिन्यूसली लाइक अंतराग्नि आइडल, ये होता है अपना आईआईटी कानपुर का फेस्ट होता है अंतराग्नि करके, तो तीन साल मैं उसका कंटिन्यूसली विनर था एंड बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलता था। लाइक कॉलेज लेवल पर आके मेरा जो कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ असली में, मैं मतलब कॉन्फिडेंट हुआ अपने ऊपर कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ म्यूजिक फील्ड में, और फिर मैंने अपने आप सोचा कि अब आगे चलते हैं कुछ और करते हैं।
जी दिग्विजय, आपने मुझे मेरे कॉलेज के दिन याद दिला दिए और वाकई दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो फेस्टिवल माहौल होता है वो एक अलग ही उसकी फील है, मैं यकीनन महसूस कर सकता हूँ आपने कितना अच्छा महसूस किया होगा जब आपको यहाँ प्राइजेस वगैरह मिलते थे। फाइनली जब आपने ये डिसाइड किया कि मुंबई जाना है, तब ये कॉन्फिडेंस था कि वहाँ पे इजीली काम मिल जाएगा, क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं कि बहुत कंपटीशन है आज के दौर में और बहुत सारे सिंगर्स हर जगह से आ रहे हैं, कोई टीवी शोज वगैरह से भी लोग आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं घर वालों के अंदर ये असमंजस रहा कि यार क्या भेजना चाहिए, या आपके अंदर ये बात रही कि जाना चाहिए या नहीं, कुछ ऐसा रहा?
सजीव जी, जब मैं मुंबई लाइक यहाँ से निकला दिल्ली से, तो मतलब मेरे अंदर ये फीलिंग था कि मुझे इन जनरल कुछ पता नहीं था कि क्या होना है वहाँ पे, बिकॉज मेरा जो वॉइस टेक्सचर है, मैं जब दिल्ली में गाता था तो लोग बोलते थे कि बहुत मोटी आवाज़ है, बहुत खराश है आवाज़ में, मतलब पर्सपेक्टिव दिल्ली वालों का ये था, तो मेरे को कहीं ना कहीं नहीं पता था कि लोग क्या मतलब मेरे को मतलब किस तरह से लेंगे, मेरी वॉइस को एक्सेप्ट कैसे करेंगे। तो अभी एक कॉम्पिटिशन आया था दो साल पहले, बेनेडिक्ट गोल्डन वॉइस, उसमें मैं गया था, मैं सेलेक्ट हो गया उसमें, मैं मुंबई गया तो उसमें मेरे को पता चला कि शंकर जी हमें जज करेंगे, उस चीज़ की वजह से मैं मुंबई शिफ्ट हो गया। शुरू का टाइम थोड़ा स्ट्रगल वाला था बिकॉज मैं किसी को जानता भी नहीं था मुंबई में, बट धीरे धीरे मैंने उस जगह को अडेप्ट किया, और क्योंकि मेरे को जिस जिसको भी मैं गाना अपना सुनाता था वो मुझे बोलते थे कि यार यू आर वेरी डिफरेंट टेक्सचर, वेरी डिफरेंट वॉइस, बहुत अलग आपकी आवाज़ है और बहुत अलग सोल है आपकी आवाज़ में, तो मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ यहाँ आके, मेरे को लगा कि हाँ यार कुछ ना कुछ तो हो पाएगा मेरा। फिर उसके बाद मेरे को शंकर जी ने बुलाया फॉर कट्टी बट्टी, फिर सलीम जी ने मेरे को बुलाया एंड अब भी काफ़ी लोग मेरे को बुला रहे हैं, आज भी आई एम गोइंग फॉर अ रिकॉर्डिंग, विशाल शेखर के लिए मैं गाना रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज, यशराज के लिए, तो मतलब उसके बाद से धीरे धीरे चीजें अच्छी हो रही है मेरे साथ, और मैं भी लगा हूँ। आई नो कंपटीशन बहुत है यहाँ पे, सिंगर्स की कमी नहीं है, मेरे खुद सीनियर्स 15-15 साल से मुंबई में स्ट्रगल कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, आपको पैशनेट होना बहुत जरूरी है अपनी आर्ट के लिए, तभी आपका कुछ अच्छा हो पाएगा।
जी दिग्विजय, आपकी आवाज़ वाकई एक अलग टेक्सचर की है, इसमें कोई शक नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने सीखा भी हुआ है, जो बहुत कम लोग इस तरह की प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं। मैं जानता हूँ बॉलीवुड में बहुत सारे गायक ऐसे रहे हैं, कामयाब गायक ऐसे रहे हैं जो बिना सीखे कामयाब हुए हैं, लेकिन सीखने वाले जो गायक होते हैं, जिन्होंने सीखे हुए होते हैं, उनकी एक अलग ही बात होती है, ऐसा मुझे विश्वास है। तो थोड़ा सा अपने गंधर्व के दिनों को याद करके कोई एक क्लासिकल बेस्ड बंदिश हमारे श्रोताओं के लिए सुना सकते हैं?
मैं एक बंदिश आपको सुनाऊंगा यमन राग में, थोड़ा सा कुछ अभी भी सखी कलन पड़त मोरे घड़ी पल छिन गेन ए रे आरे पिया बिन अरे ए रे आरे पिया बिन सखी कलन पड़त मोरे घड़ी पल छिन गेन
बहुत बहुत खूब दिग्विजय। आगे बढ़ते हैं, ये बताइए कि मुंबई में आने के बाद पहला ब्रेक कैसे मिला और किसने दिया?
मुंबई में जब आ गया था वो रेडियो शो के लिए, बैनरल पे गोल्डन वॉइस के लिए मुंबई शिफ्ट हो गया था, तो शो खत्म हो गया था, 6 महीने बीत चुके थे, मैं सिर्फ रियाज कर रहा था, लोगों से मिल रहा था। तो एक रात हम लोग, मेरे दोस्त का बर्थडे था तो हम लोग खूब पार्टी वार्टी कर रहे थे, तो उसके अगले सुबह मैं सो रहा था, 10 बज गए थे सुबह के, मैं सो रहा था, फ़ोन साइलेंट पे था, तो मैं जैसे उठा तो मैंने देखा शंकर महादेवन के 6-7 मिस कॉल थे। उसके बाद मैंने तुरंत उनको कॉल बैक किया, तो उन्होंने मेरे को बोला कि दिग्विजय आप 2 बजे अगर फ्री हो तो यशराज आ जाओ, यशराज स्टूडियोज। और मेरा सपना हुआ करता था कि मैं कभी क्या यशराज के अंदर गा पाऊंगा घुस के। बहुत ही रैंडम जो भी हुआ मेरे साथ, बहुत ही रैंडम था, अचानक उनका कॉल आया और मैं फिर यशराज गया रिकॉर्ड करने फॉर द फिल्म कट्टी बट्टी जागो मोहन प्यारे। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जो मैंने, मतलब इतने बड़े कंपोजर डायरेक्टर के लिए मैंने गाया, वो भी यशराज स्टूडियोज में, तो बहुत ही अच्छा मेरे लिए मौका था ये।
जी यकीनन, किसी बॉलीवुड फिल्म के लिए पहली बार गाना वो अपने आप में ही एक एक्सपीरियंस रहा होगा। तो ये गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आप अपनी आवाज में गा के सुनाइए इस गाने को।
फ्रॉडी राधे चाइनीज वादे करती है कुड़ियां, कह रहे को ही हम लड़कों पे मरती है ये कुड़ियां। फ्रॉड इरादे चाइनीज वादे करती है ये कुड़ियां, कहने को ही हम लड़कों पे मरती है ये कुड़ियां। जो देखे नहीं वो रात में वो दिन में दिखा दे तारे, जागो 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 मोहन प्यारे।
दिग्विजय, मुझे लगता है कि आपकी आवाज़ का जो टेक्सचर है और जो रेंज है, उसके लिए इस गाने से बेटर कोई गाना आपके लिए हो ही नहीं सकता था एक शुरुआत करने के लिए। और शंकर महादेवन जी जो हैं वो तो पार्की हैं हीरो के, तो उन्होंने आपको पहचान लिया और परफेक्ट कास्टिंग करी है इस गाने की। तो मैं अपने श्रोताओं को सुनवाता हूँ जागो मोहन प्यारे फिल्म कट्टी बट्टी, और उसके बाद मैं लौटता हूँ, आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं।
जुर्मों में है प्यार स्पाइसी स्पाइसी और चटपटा, थोड़ा थोड़ा अटपटा।
Come on, come on, here we go now.
फ्रॉड इरादे
चटपटा
चाइनीज वादे, फ्रॉड इरादे चाइनीज वादे करती है ये कुड़िया।
दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक मुलाकात जरूरी है रेडियो प्लेबैक इंडिया पर, और आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं एक बहुत ही काबिल गायक दिग्विजय सिंह परियार। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपने सलीम सुलेमान के साथ भी काम किया, तो उस संगीतकार जोड़ी के साथ काम करने का आपका अनुभव कैसा रहा ये बताइए।
सजीव, सलीम सुलेमान जी के साथ जो मैंने काम किया वो आप ये कहेंगे कि मिरेकल होगा, लाइक बिकॉज मैं एक रेडियो में, मेरा जितना भी करियर जो स्टार्ट हुआ ना रेडियो से स्टार्ट हुआ पहली बार, बिकॉज मैंने भी सोचा था कभी मैं रियलिटी शोज वोज में जाऊंगा वहां से मुझे कोई पिक करेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लाइक मैं एक रेडियो शो में गया, वहां से मुझे शंकर जी ने बुला लिया, और एक दिन मैं अनु कपूर जी, आप जानते होंगे अनु कपूर जी, उनका इंटरव्यू था, उन्होंने बुलाया था दिग्विजय बेटा आप आ जाओ एक इंटरव्यू करना है आपके साथ। तो मैं अनु कपूर जी को इंटरव्यू दे रहा था, तो मुझे ऐसे पता चला किसी के थ्रू कि सलीम सुलेमान उस स्टूडियो में आने वाले हैं। आई एम वेरी पैशनेट अबाउट माई आर्ट, लाइक मेरे को लगा कि आज तो उनको कुछ ना कुछ करके सुनाना ही है। तो मैं उनके स्टूडियो के बाहर जाके बैठ गया गिटार लेके कि कभी ना कभी आएंगे तो एक दो लाइन गा दूंगा, उनको कानों में पड़ जाएगी। और मैंने ऐसा किया, जो सोचा वही हुआ। मैं नॉर्मल ऐसे ही गा रहा था, वो वहाँ से गुजरे, वो चार सेकंड सुन के मेरे पास आए, उन्होंने बोला कि आपका नाम क्या है, मैंने बताया, उन्होंने कहा यू हैव अ वेरी डिफरेंट वॉइस। उन्होंने मेरे को बैठ के सुना बाकायदा 10 से 15 मिनट और मेरा नंबर लेके गए एंड देन मुझे बुलाया। एंड जो रिकॉर्डिंग एक्सपीरियंस था उनके वहाँ का अलग लेवल था, मतलब वो गाना इतना सुंदर है जुदाइयां जो मैंने उनके लिए गाया है अन इंडियन फिल्म का, तो इतना फील वाला मेरे जॉनर का सॉन्ग है, मेरे मतलब मेरे जून का सॉन्ग है। तो मैं इतना खुश हुआ उस गाने को सुन के, एंड सलीम सर ने मुझे लाइक इतना बूस्ट किया कि दिग्विजय, मतलब बहुत अच्छा लगा मेरे को उन लोगों का काम करके। और ये लोग शंकर जी, सलीम सर, ये लोग इतना बूस्टअप करते हैं, प्यार करते हैं कि तुम बस निराश मत हो, बस काम करते जाओ, कुछ एक्सपेक्ट मत करो, बस काम करते जाओ। और उसी चीज़ पर मैं लगा हुआ हूँ और कर रहा हूँ।
वाह क्या बात है दिग्विजय, तो जरूरी है कि आप उस गाने को भी थोड़ा सा सुनाएं हमारे श्रोताओं के लिए प्लीज।
विसुन हर जाया हर जाया, विसुन हर जाया हर जाया, रब्बा इश्क रुलैया, रब्बा इश्क सतैया, वे मैनू तड़पैया तरसैया, वे तेरी जुदैया मार छड़ैया, वे तेरी जुदैया मार छड़ैया, वे तेरी जुदैया मार छड़ैया, वे तेरी जुदैया मार छड़ैया।
बहुत खूब दिग्विजय। अच्छा ये बताइए कि आजकल जैसे एक दौर चल रहा है उसमें कई बार गायकों को पता ही नहीं होता कि वो उन्होंने एक अपनी आवाज़ रिकॉर्ड तो कर ली है गाने के लिए, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि किस गायक की आवाज़ में वो गाना फाइनली एल्बम में आएगा, तो कभी ऐसा भी हुआ है आपके साथ?
जी सजीव, बिल्कुल बहुत बार ऐसा हुआ है। मैं बहुत सारी फिल्मों के स्क्रैचेस गाता हूँ, बहुत सारे लोग गाते हैं, इवन अरिजीत सिंह भी गाता है, अरिजीत सिंह, जुबिन नौटियाल एंड जितने भी नए नए सिंगर्स हैं, मिक्का सिंह, ये सब लोग भी स्क्रैचेस गाते हैं, और इन लोगों को भी पता नहीं होता कि इनकी वॉइस में फाइनल होना है या किसकी वॉइस में फाइनल होना है, बिकॉज ये जो कॉल होता है ये प्रोड्यूसर लेता है या डायरेक्टर लेता है कि किसकी आवाज़ जाएगी आगे। तो ये कॉम्पिटिशन तो हमेशा ही रहता है। लाइक मैं इतने फिल्मों के लिए गा चुका हूँ गाने, जब रिलीज होंगे तब आपको रिलीज होने से 10-15 दिन पहले पता चलता है कि आपका गाना है या नहीं, बिकॉज इवन रॉक ऑन में भी मेरे को पता नहीं था कि मेरा फाइनल है या नहीं। मेरे को 10 दिन पहले कॉल आया और शंकर जी ने मेरे को बताया कि क्रेडिट्स देना है तुम्हारा, तो बताओ पूरा कैसे क्या करना है, तो मैं बड़ा खुश हो गया। तो ये अनसर्टेन तो थोड़ा है फील यहाँ पे, बट कंटिन्यूटी अपने रखोगे, गाते रहोगे लोगों के लिए, तो इससे अच्छा कुछ नहीं है, लाइक ऐसे ही आपको चांस मिलेगा। और आपकी आवाज़ में अलग बात हुई तो आपकी आवाज़ ही चूज होगी। तो इसलिए मैं जहाँ भी जाता हूँ अपना स्क्रैच बेस्ट लेवल गाता हूँ कि डायरेक्टर सुने तो सीधे इम्प्रेस।
जी तो रॉक ऑन की ही बात करते हैं, रॉक ऑन में जो आपका गाना आया है वो वाकई आपके आपकी आवाज़ से बहुत ज़्यादा सूटेबल है और बहुत ही बढ़िया गाना बनकर आया है। तो इस गाने की कहानी थोड़ा सा बताइए कि ये गाना जब आपने रिकॉर्ड किया, यादें हैं इस गाने से जुड़ी हुई, थोड़ा सा मस्ता शेयर कीजिए।
सजीव जी, जो रॉक ऑन का मेरा एक्सपीरियंस रहा बहुत ही अलग रहा, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट रहा इस रिकॉर्डिंग से। पहले 2 महीने मुंबई में था, आई वॉज डूइंग शोज इन ऑल। तो 2 महीने बाद मैंने सोचा कि मैं घर जाके घर होके आता हूँ, थोड़ा फ्रेश होके आता हूँ। तो मैं घर गया, घर जैसे मैंने फ्लाइट लैंड किया, घर पहुँचा, खाना खाया, शंकर जी का मेरे पास कॉल आ गया कि दिग्विजय नेक्स्ट डे आप क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा सर मैं तो दिल्ली में हूँ। उन्होंने बोला कि वो हमें एक डबिंग करना था आपके साथ, यशराज में कुछ काम है वो करना था। तो मैंने कहा सर आप बताइए इफ यू वांट, मैं आ जाऊँगा फ्लाइट करके। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि ठीक है तुम आ जाओ। तो मैं फ्लाइट पकड़ के ये मुंबई आया एंड अगली मॉर्निंग 10 बजे यशराज में रिकॉर्डिंग हुआ। मैंने गाना सुना, मुझे बहुत ही अच्छा लगा ट्रैक, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो गाना मैंने गाया और शंकर जी ने फिर, मैंने शंकर जी को पूछा कि शंकर जी किस चीज़ के लिए गाना लेगा आप यूज़ कर रहे हो। तो उन्होंने बताया कि एक मूवी आई थी रॉक ऑन, उसका सीक्वल आया है, उसके लिए गाना हम लोग कर रहे हैं। तो आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज बड़ी फिल्म है एंड इस फिल्म की बात यह है कि म्यूज़िक के ऊपर फिल्म है। और फरहान और श्रद्धा ने बाकी सारी गाने गाए थे, एक दो ही ऐसे सिंगर्स हैं जिन्होंने बाहर से लिए, लाइक उषा उत्थुप एंड मेरे को लिया। तो आई वॉज वेरी हैप्पी, रियली हैप्पी। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। तो मैं आपको 2 लाइन को सुनाना चाहूँगा। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग में हमें दुनिया से यारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, इश्क मस्ताना, इश्क मस्ताना, इश्क हमन है इश्क मस्ताना, इश्क मस्ताना, इश्क मस्ताना, इश्क। थैंक यू सजीव जी, थैंक्स अ लॉट।
थैंक यू दिग्विजय, और बहुत बढ़िया आपने ये गाना गाया। ये गाना हम अपने श्रोताओं को जरूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक आखिरी सवाल। आजकल के जो आर्टिस्टों की फौज है, जो गायकों की फौज है, उनमें से आपके सबसे पसंदीदा कौन से हैं, और कोई गाना अभी हाल में प्रदर्शित ऐसा रहा है जिसको सुनकर आपको लगा हो कि काश ये मैंने गाया होता?
सजीव, अभी हाल ही में तो बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, लाइक मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, भाई लोग भी हैं, लाइक अरिजीत दादा, लाइक ही इज़ अ लेजेंड, ही इज़ अ लिविंग लेजेंड, बहुत अच्छा गा रहे हैं। जुबिन नौटियाल भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट अरिजीत दादा का अभी चन्ना मेरिया गाना जो आया है, वो अगर लाइक मेरे को भी एक वर्जन उसका मिलता तो बहुत अच्छा लगता मेरे को भी, बहुत अच्छा, मतलब मेरे वो भी मेरे जोन का ही गाना है। बहुत सीखते हैं उनसे कोई भी आर्टिस्ट। मैं तो ऐसा इंसान हूँ कि लाइक कोई भी आर्टिस्ट हो जाए, मैं उससे छोटा ही क्यों ना हो, अगर वो अच्छा है तो मैं उससे कुछ अच्छा सीखने की कोशिश करता हूँ। लोगों का प्यार मिलता रहेगा तो इंशाल्लाह। मैं अभी कुछ मेरे कुछ गाने भी आने वाले हैं आगे कुछ फिल्म में, तो देखिए क्या होता है।
दिग्विजय, आपके आने वाले सभी गानों के लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी बधाइयां। इतना तो मैं श्योर हूं कि आपके सभी गीत बहुत अलग हटकर होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, और सुनने वालों को यकीनन बहुत मजा आने वाला है। इसी शुभकामना के साथ हम आपको जाने देते हैं, और आपको ढेर सारा आपको धन्यवाद कि आप हमारे कार्यक्रम में आए, अपना समय निकालकर हमसे बातचीत की। तो दोस्तों, ये थे दिग्विजय सिंह परियार, आज के दौर के बहुत ही अव्वल गायक। आप सुनिए इन्हीं का गाया गीत फिल्म रॉक ऑन 2 से, इश्क मस्ताना। और इसी के साथ मुझे भी इजाजत दीजिए, खूब सारा म्यूजिक सुनिए, खूब सारा एंटरटेनमेंट लीजिए, और मस्त रहिए जिंदगी में।
मटकते दर बदर फिरते हमारा यार है हमें हमन को इंतजारी क्या हमन है हमन है हमें दुनिया